ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को सच्चा ब्राह्मण बना करके कर्मयोगी यथार्थ रूप में बनाया, और कर्मयोगी इसीलिए बनाया ताकि कर्म योग से ही कर्मातीत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। बिना कर्म योग के कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती है, तो कर्म योग से कर्मातीत अवस्था तक की यात्रा, इसी का नाम है सच्चा ब्राह्मण। कर्म जीवन का एक अनभिज्ञ अंग है। कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, और बाबा ने भी हमें कर्म सन्यासी नहीं बनाया है, कर्म योगी बनने की प्रेरणा दी है। कर्म अंतिम समय तक हम करते ही रहते हैं। कर्म अनिवार्य है, परंतु वो कर्म करने की वृत्ति क्या है, ये इस पर विशेष आधार रहता है। आज दुनिया में जब लोगों के कर्म को देखते हैं तो कर्म बंधन महसूस होता है उनको, कर्म एक बोझ अनुभव कराता है, और कर्म करते हुए वो भारीपन का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म विकर्म अधिक होते हैं, तो जहां विकर्म अधिक हो तो वो कर्म बंधन, बोझ या भारीपन का अनुभव कराता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कर्म में योग को शामिल करने के लिए प्रेरणा दी है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा वक्त हम योग में रह करके ही चलते रहे, कोई सिमरण करते रहे या जाप जपते रहे, ये भी नहीं है। भक्ति में अक्सर लोग एक जाप करते रहते हैं अंदर में, कोई ना कोई मंत्रों का, और उसी को वो कर्म योग समझते हैं। दुनिया में जो गृहस्थी होते हैं वो कर्म योग किसको समझते हैं? सोचते हैं भगवान ने हमें जो कर्तव्य दिया है या जो हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम बहुखूबी निभाएं या अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पालन करें, माना हम कर्म योगी हैं। एक बार किसी फंक्शन में हमारे साथ में स्टेज पर एक स्थान का कलेक्टर बैठा हुआ था, विषय राजयोग से संबंधित कुछ था, तो उस भाई ने खड़े होकर के सभा में यही कहा कि भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है, हम अपने कर्तव्य को निष्ठा से पालन करते हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, यही हमारा कर्म योग है, राजयोग से हमें कोई मतलब नहीं। उस समय मेरा एक चिंतन चला कि कर्म योग की सही परिभाषा क्या है? क्या कर्तव्य पालन कर लेना या अपनी जिम्मेवारी को निभा लेना, क्या यही कर्म योग है? क्योंकि कर्तव्य पालन तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी वो भी निभा रहे हैं, बच्चों को पैदा करना, पक्षी भी आज एक अपने बच्चे को पैदा करके उसके लिए दाना लाती है, उसको उड़ना सिखाती है ना, पशु भी अपने बच्चों को पैदा करके उनको सिखाते हैं, वो भी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। क्या उनको कर्मयोगी कहेंगे? वो तो कर्मयोगी नहीं कहेंगे। अगर मनुष्य ने भी कर्तव्य पालन कर लिया, जिम्मेवारी निभा ली और उसी के आधार पर वो जीवन जीते रहे, तो वो कर्मयोगी तो नहीं हुए। कर्मयोग का मतलब कुछ और है और वो बाबा हमें सिखाता है। कर्म बंधन और कर्म संबंध दो चीज है। मनुष्य के कर्म बंधन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो कर्मेंद्रिय के वश होकर के कर्म कर रहे हैं, अहंकार की वृत्ति में आकर के कर्म कर रहे हैं, या हर कर्म के पीछे कोई न कोई आसक्ति या स्वार्थ समाया हुआ होता है। तो जहां ये मैंपन का भाव, अहंकार का भाव या कर्मेंद्रिय के वश होकर के कर्म करते या अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, तो वो कर्म बंधन बनाता है। लेकिन कर्म योग की कला क्या है? तो कर्म योग की कला है कि जहां निमित्त भाव हो। बड़ी दादी जी को हमने देखा, दादी ने कभी ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैं कर रही हूं या मैं इतनी बड़ी संस्था को चला रही हूं। आज भी दादी जानकी को देखते हैं, दादी गुलजार को हम देखते हैं, कहीं पर भी वो मैंपन की फीलिंग नहीं है, या सामने वाले को भी ये एहसास नहीं कराते हैं कि मैं ये कर रही हूं या बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, वो भाव भी नहीं है। वो भाव से भी परे हैं, इसीलिए उनका हर कर्म अनेकों को सुख प्रदान करता है, खुद को भी सुकून देता है और दूसरों को भी सुख प्रदान करता है। तो जहां हमारे कर्म निमित्त भाव में हम या देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते, तो उसका पहला लक्षण कि खुद को भी उस कर्म करने के बाद सुकून मिलता है और दूसरों को भी हमारे कर्म के माध्यम से सुख की अनुभूति होती है, सुखदायी वो कर्म होता है, वो कर्म योग है। जब हम कहते हैं कि देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना, माना क्या? कि आत्मा की वास्तविकता है सात गुण, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जहां आत्मा की वास्तविकता सात गुण है, तो वो सात गुणों के स्वरूप होकर के कर्म में आना, ये है देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के कर्मयोगी बनना, यानी हर कर्म करते समय शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये सातों गुण इमर्ज रूप में हो। और उसके लिए बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठ साधन जो दिया है कि ब्राह्मण जन्म होते ही हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, और उस दिव्य बुद्धि में जब ज्ञान को समा लेते हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्ञान को अपनी बुद्धि के अंदर समा रहे हैं, और जब ज्ञान को समा लेते तो हमारी विवेक शक्ति जो है बहुत पावरफुल हो जाती है, यानी सही गलत को अच्छी तरह से पहचान सकती है। इतनी बुद्धि हमारी स्वच्छ क्लियर हो जाती है, सही क्या है गलत क्या है उसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो जो दिव्य बुद्धि के प्रयोग से विवेक से कर्म करता है वो है कर्म योग। आज मनुष्य कर्म करते हैं, मनुष्य तो क्या, कई बार ब्राह्मण भी जब कर्म में आ जाते हैं तो ज्ञान युक्त होकर के कर्म नहीं करते हैं। इसीलिए जीवन में ये शिकायत बनी रहती है कि योग नहीं लगता है। योग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि दिनचर्या में कर्म योगी बनकर के हमने कर्म नहीं किया है। कहां ना कहां पुराना स्वभाव संस्कार के वश होकर के कर्म में आ गए, इसीलिए वो कर्म बांधने वाला अनुभव हो जाता है, मुक्त करने वाला नहीं। कर्म बंधन से मुक्त होना पहला अवस्था यही है कि कर्म बंधन में तो कई कर्म हमने कर लिए अब तक, लेकिन अगर मुझे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना ये मेरा लक्ष्य है जीवन का, ब्राह्मण जीवन का, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कर्म बंधन मुक्त अपने आप को बनाना होगा। और कर्म बंधन मुक्त तभी बनेंगे कि जब हम उस मैंपन से ऊपर या आत्मा के सातों गुणों में स्थित होकर के कर्म करें, और उसमें भी सबसे पहले ज्ञान युक्त बुद्धि से कर्म करें। हर कर्म में ज्ञान का समावेश हो, ज्ञान का प्रयोग हो। बाबा ने हमें साकार मुरली के अंदर जो छोटी छोटी शिक्षाएं भी दी हुई है ज्ञान युक्त कर्म करने के लिए, चाहे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा ध्यान खींचा है। आज की मुरली में भी कई ऐसी बातें शिक्षाओं के रूप में रही कि हमें किस तरह दिनचर्या के अंदर कौन सी बात का की सावधानी चाहिए, और उसी के लिए बाबा हर रोज हमें या कई बार हमें मुरली के अंदर ये बात कहते हैं कि चार्ट रखो अपना। चार्ट कर्म के लिए ही होता है, खास करके मनसा लेवल तक की बातें का चार्ट रखना ये तो बहुत दूर की बात है। अगर मेरे प्रैक्टिकल कर्म में हम छोटी छोटी बातों में भी अवज्ञा कर रहे हैं, दिनचर्या में हम कर्म में क्लियर कॉन्शियसनेस नहीं है, तब वो कर्म बंधन ही बनता है, और वही हमें ब्राह्मण जीवन में भी भारीपन का अनुभव कराता है। तो इसीलिए ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना, क्योंकि जो ज्ञान युक्त होगा वो योग युक्त जरूर होगा। बिना ज्ञान युक्त योगयुक्त नहीं बन सकते हैं। कई बार कई लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल करके कहेंगे, बाबा ने कहा है ना युक्ति युक्त होकर के चलना, उसको युक्ति युक्त नहीं कहा जाता है। ज्ञान युक्त ही योग युक्त और युक्ति युक्त होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में भी पुराने स्वभाव संस्कार के वश होकर के झूठ बोलना या छोटी छोटी बातों के लिए किसी को गलत बोल करके हम अपने आप को छुड़ा देते हैं, तो उसको ज्ञान युक्त, वो कर्म योग नहीं है। जब ज्ञान युक्त ही नहीं है तो योग युक्त भी नहीं और युक्ति युक्त भी नहीं है। कई लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि युक्ति युक्त का मतलब क्या है, क्या अपने आप को छुड़ा देना झूठ बोल करके इसको युक्ति युक्त कहते हैं? नहीं, उसमें बल नहीं होता है। ऐसे जब अपने आप में हम करते हैं तो उसमें बल नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान युक्त होकर के आप चलेंगे तो योग युक्त और युक्ति युक्त भी स्वतः बन जाएंगे। उसमें कई बार ये सवाल जरूर आता है कि जो बांधेली माताएं हैं या बांधेले हैं, तो वो क्या जो घर में छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ बोलते हैं तो उसका बंधन बनता है? बंधन तो जरूर बनता है, लेकिन अगर उसमें किसी को आपने कष्ट नहीं पहुंचाया, हमारा कर्म किसी को दुख प्रदान नहीं कर रहा है या हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा है, तकलीफ नहीं दे रहा है, तो वो युक्ति युक्त अवश्य है। लेकिन वो जैसे बहुत लास्ट स्टेज की हालत में, ये मत समझना कि उसमें भी बंधन नहीं बनता है। बंधन तो बनता है, लेकिन उस बंधन से मुक्त होने की भी बाबा विधि बताते हैं कि इतना श्रेष्ठ कर्म करो साथ में और सामने वाले को इतना सुख दे दो उस कर्म से, ताकि वो बंधन क्रिएट करने की हिम्मत न करे। वो है युक्ति युक्त या ज्ञान युक्त होकर के कर्म में आना। कई बार कई लोग बंधन क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं पर विश्वास की कमी है, निश्चय की कमी है, भरोसे की कमी है, तब वो बंधन क्रिएट करने के निमित्त बन जाते हैं। लेकिन हमारा श्रेष्ठ कर्म उनको इतना सुख प्रदान करे तो वो बंधन डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा कर्म उनको दुख प्रदान कर रहा है तो वो क्या सोचते हैं? वहां जाने से ही ये हुआ है, जब से यहां जाना शुरू किया तब से लेकर के हमारे गृहस्थ धर्म में, जीवन में हमें दुख की प्राप्ति होती है। और जब उनको ये महसूस होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उनका विश्वास भरोसा टूटने लगता है। इसीलिए वो बंधन, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है, तो वो बंधन डालने का प्रयत्न करते हैं, आपको रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो इस जब भी बंधन महसूस हो तो ये हमें अंदर से एक सिग्नल देता है कि कहीं न कहीं मेरे कर्मों में कोई त्रुटि है जो उन्हें तकलीफ दे रहा है। तो मैं अपने श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से इतना श्रेष्ठ कर्म करके उनको भी सुख प्रदान करूं तो वो बंधन डालने की हिम्मत न करें। उसको कहा जाता है ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना, जो सामने वाला बंधन डालने की हिम्मत न कर सके आपके सामने। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ बोलते रहेंगे और फिर कहे कि ये बंधन डालता है तो क्यों डालता है, कहीं ना कहीं मेरा झूठ पकड़ा जा रहा है, इसीलिए उसका विश्वास टूट रहा है और ज्ञान पर से भी उनका भरोसा खत्म हो रहा है, परमात्मा से भी उनका भरोसा खत्म हो रहा है कि क्या भगवान के पास जाकर के यही सीखने को मिलता है कि आप झूठ बोलो। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से हम अनेकों को सुख दे, हल्के रहे, तो सामने वाला भी हमें बंधन डालने की हिम्मत न करे। दूसरी बात कि पवित्र वृत्ति से कर्म करने की बात है। गीता के अंदर भी बहुत सुंदर ये बात कही है कि मनुष्य को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है सिर्फ, लेकिन वो कर्म करने की वृत्ति है कि किस वृत्ति से वो कर्म किया गया है। तो जितनी हमारी पवित्र वृत्ति होती है कर्म करते समय, शुद्ध भावना से हम कर्म करते हैं, अनेकों के कल्याण की वृत्ति को लेकर के हम कर्म करते हैं जिसमें स्वार्थ भावना न हो लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना समाई हुई हो, पवित्र भावना हो, तो वो कर्म कर्म योगी हमें बनाता है। योग माना ही पवित्रता, योग माना शुद्धि। योग को एक तपस्या कहा गया है, ऋषि मुनियों ने योग किया, तो माना जहां पवित्र भावनाएं हो हमारे कर्म के अंदर, उसको कर्म योग कहा गया है, तभी हमारी तपस्या भी सफल होगी। बड़ी दादी जी को जब हम देखते थे, प्रकाशमणि दादी जी को, कभी भी उनकी दृष्टि के अंदर दोष नहीं किसी का, जबकि हर एक के अंदर गुण अवगुण दोनों ही होते हैं, लेकिन दादी जी कभी भी वो दोष को सामने रखते हुए व्यवहार में नहीं आते थे। दोष दृष्टि रहित होकर के उनका हर कर्म का आचरण होता था। लेकिन हम लोग जब कर्म करते हैं तो कभी कभी सामने वाले के दोष अवगुण भी हमारी दृष्टि में रहते हैं और फिर हम कर्म में आते हैं, तो वो हमें कर्म योगी नहीं बनाता है। तो पवित्रता अगर मुझ आत्मा का निज गुण, निज स्वरूप है, तो पवित्रता माना हमारी दृष्टि के अंदर मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध और पवित्र हो, किसी का दोष सामने रखते हुए मुझे व्यवहार में नहीं आना है। और जब हम ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ कर्म करेंगे तो सामने वाले को भी ये महसूस होगा, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस उनको महसूस होंगे, ये वृत्ति उनको भी हल्का करेगी, वो कभी भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी पवित्रता की शक्ति ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण है, क्वालिटी है, उस भाव को अंदर भरो, तभी तो जैसे देवताओं को देखते हैं तो उनके कर्म श्रेष्ठ, क्योंकि धर्म श्रेष्ठ, तो कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ हम तभी बन सकते हैं। तो धर्म माना धारणा, तो जीवन की सर्वप्रथम धारणा हमारी है ही पवित्रता। तो वो पवित्र भाव के साथ हम कर्म में आए, कर्म का आचरण करें, ये कर्म योगी हमें बनाता है। अगर मेरी दृष्टि के अंदर किसी का दोष चिंतन में भी चल रहा है या उसी भाव में आकर के भावना में आकर के हम कर्म में आते हैं तो कर्म योगी नहीं है, वो कर्म बंधन में बांधने वाला है, है ना। तीसरा, जो कर्म हमें मिले, जो भी कर्म करे, हम प्रेम से करें, खुशी से करें। जब हम प्रेम से खुशी से कोई भी कर्म का आचरण करते हैं तो वह हमें अंदर से हल्का करते हैं। लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प चला करके हम कर्म करते हैं, चाहे सेवा ही क्यों न कर रहे हैं सेंटर पर या यज्ञ के अंदर भी व्यर्थ संकल्प चलाते हुए हम सेवा कर रहे हैं तो वो भी हमें कर्म योगी नहीं बनाता है, कर्म बंधन में बांधता है। इसीलिए बाबा यही कहते हैं कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। तो व्यर्थ चिंतन, मुझे याद आता है कि शुरू शुरू में जब सेंटर्स पर हम सेवा करते हैं तो हर प्रकार की सेवा करनी होती है। हम जब सेंटर पर जाते थे, छोटे थे तो छोटों को क्या सेवा दी जाती है सेंटर पर, चलो सफाई कर लो, है ना। वो भाषण तो कर नहीं सकते हैं और कोई काम तो कर नहीं सकते थे, तो हम लोगों को ये कहते थे अच्छा झाड़ू पोछा कर लो। तो जब मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए सेवा दी गई, मैंने जीवन में कभी नहीं किया था, घर में कभी नहीं किया था, लेकिन जब झाड़ू पोछा करने की सेवा मुझे मिली तो मुझे पता नहीं उस दिन इतनी खुशी हुई। और मैं झाड़ू पोछा लगाते समय मन में यही सोच रही थी कि मैं दधीची ऋषि हूं, ये मेरा ही गायन है कि हड्डी हड्डी स्वाहा करना। मैं ये सोचती थी कि अगर मैं भाषण करती थी, क्योंकि उस समय मैं भाषण नहीं कर सकती थी, तो मैं सोचती थी कि भाषण करते थे ना तो शायद एक ही मुख पवित्र, यही एक इंद्रिय पवित्र होती थी, लेकिन ये झाड़ू पोछा करने से मेरी हर कर्मेंद्रिय पावन हो रही है, तो ये मेरा ही गायन है ना, कि मेरे हर कर्मेंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो रही है, यज्ञ में स्वाहा हो रही है। तो मुझे इतनी खुशी होती थी वो झाड़ू पोछा लगाने में, तो मैंने ये देखा कि वो कर्म करने के बाद मैं हल्कापन महसूस करती थी। लेकिन आज जब कई बार हम देखते हैं कि कईयों को हम कहते भी हैं, पहले तो सोचना पड़ता है कि कहे या न कहे, भाई झाड़ू पोछा करने के लिए कहे या न कहे, है ना। लेकिन अगर कहते भी है किसी को चलो इतना सफाई कर लो, झाड़ू पोछा लगा दो, तो वो कह अंदर में व्यर्थ संकल्प, क्या हम इसके लिए ही है। कई कन्याएं मुझे आकर के कहती भी है कि हम सेंटर पर समर्पित नहीं होना चाहते। मैंने कहा क्यों नहीं समर्पित होना चाहते, सेंटर पर जाना माना झाड़ू पोछा ही करना, क्या यही सेवा है और कोई सेवा सेवा नहीं है क्या। लेकिन हर एक को उसी लेवल से गुजरना ही पड़ता है ना। आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी सेवाओं में भी जितना कर्म श्रेष्ठता आती जाएगी, तो वो कर्म श्रेष्ठ जो हुआ उसका बल हमें आगे बढ़ाता है। जब तक हमने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ वृत्ति से नहीं किया, खुशी से, उमंग से, उत्साह से, प्रेम से नहीं किया, तब तक जमा का खाता नहीं हुआ। और जमा का खाता नहीं है तो कर्मयोगी कैसे हुए। कर्मयोगी माना जिसका जमा का खाता भरपूर होता है। यज्ञ में जब हम आए तो भोली दादी को हम देखते थे, कभी भाषण नहीं किया उन्होंने, कभी स्टेज पर नहीं आए, लेकिन भगवान उसके कर्म को देख करके उसको याद करते थे। याद करना, क्योंकि उसका हर कर्म दूसरे को सुख देने की भावना से। मुझे याद आता है कि मैं जब यज्ञ में आई थी, सेवाधारी के रूप में ही आई थी, सेवा करने के हिसाब से ही, स्कूल में छुट्टियां थी तो यहां सेवा करने के हिसाब से रुकी थी मैं 15 दिन एक महीना में। तो मैं बाबा के कमरे से जा रही थी सोने के लिए कि अचानक एक भाई ने आकर के मुझे कहा, बोली दादी याद कर रही है। मैंने कहा रात को इस समय 10 बजे भोली दादी क्यों याद करेगी। तो मैं दादी के पास गई, मैंने कहा दादी बोलो आपने याद किया। तो कहा हां, मैंने वो पहरे वाले भाई को कहा कोई भी दिखाई दे तो बुला लो, तो इसीलिए आपको बुलाया। मैंने कहा क्या काम था दादी। तो दादी ने कहा अभी एक पार्टी आ रही है पंजाब से और 11 लोग हैं और खाना सब खत्म हो गया है, तो उनको खाने तो बना करके देंगे ना, तो वो तो चावल तो खाएंगे नहीं। हाँ, साउथ के लोग होंगे तो चावल का देगड़ा चढ़ा दिया और खिला देते, लेकिन पंजाब के लोग तो रोटियां चाहेंगे। तो तुम एक काम करो, ये आटा गूंदो, रात को 10 बजे। दादी के मन में मना बोली दादी के मन में ये था कि बाबा के घर में एक पार्टी आ रही है, 11 लोग आ रहे हैं और वो भूखे सो जाएं ये तो होगा नहीं, तो 10 बजे मुझे कहा तुम रोटियां बनाओ। तो जब मैं वो रोटी बना रही थी, उसके बाद जब वो लोगों को खाना परोसा, गरम गरम खाना, एक भाई ने बैंगन आलू बना दिए और हमने रोटी बनाई, परोठा ही बना दिया, और दादी ने दूसरा कुछ किया, और 3 लोग थे खाली हम किचन में 10 बजे रात को। और जब उनको गरम गरम खाना परोसा हमने, जो उनके चेहरे पर खुशी देखी, उसके बाद हमें इतना सुकून का अनुभव हुआ, कहने का भावार्थ कि हमारी एक छोटी सी कर्म योग की, यानी जो स्थूल कर्म की सेवा भी अगर किसको सुख प्रदान करती हो तो वो यथार्थ कर्म योग है, वो यथार्थ कर्म। तो ब्राह्मण जीवन का हर कर्म प्रेम, शांति, सुख, आनंद, उमंग, उत्साह, खुशी से करना, व्यर्थ संकल्प चलाते हुए नहीं कर्म करना। जहां अगर व्यर्थ संकल्प चलता है और व्यर्थ संकल्प चल करके खुशी तो कभी मिलेगी नहीं, और ये कर्म भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प भी चला रहे हैं अंदर में, तो वो जमा हुआ या मना खाता खाली हुआ क्या कहेंगे, जमा तो हुआ ही नहीं। तो कर्म योग माना हर कर्म हमें जमा का खाता अनुभव कराए। अगर मेरे कर्म में व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें जमा नहीं हो रहा है, वो और ही ना के खाते में जा रहा है, लीकेज हो रहा है। तो उससे जो बल मिलना चाहिए वो बल नहीं मिलता है, लेकिन और भी भारीपन और थकावट का अनुभव कराता है। तो ये कर्म योगी जीवन नहीं है। तो कर्म योग माना आत्मा के सातों गुण, ज्ञान युक्त पवित्र भावना, खुशी, प्रेम, आनंद, उमंग, उत्साह के साथ कर्म का आचरण करना, ये यथार्थ कर्म योग है। दूसरा कर्म योग का मतलब ये है कि जहां हमारी कर्मेंद्रिय के ऊपर हमारा संपूर्ण अधिकार हो, कोई कर्मेंद्रिय कर्म करते समय विचलित न हो, मन को विचलित न करे, या मन के अंदर अशुद्ध वृत्तियों को या संकल्पों को क्रिएट न करे, जहां हमारा संपूर्ण रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हो अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर, और हम कर्म करते हैं मालिक बन करके, निमित्त भाव के साथ कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं उस कर्म के आचरण में, वो है यथार्थ कर्म योग। अगर कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के हम कर्म कर रहे हैं, कर्मेंद्रिय हमें और अधीन बना रही है, तो वो कर्म योग नहीं है, कर्म भोग है, वो भोग बन रहा है। जैसे कहा व्यर्थ संकल्प चलाते हुए कर्म करते तो वो भी कर्म भोग बनता है, कर्म योग नहीं। और वो भोग जो कर्म भोग बना वो कोई ना कोई भोगना कर्मेंद्रिय की अनुभव जरूर कराता है। बाबा की जब बाबा अव्यक्त हुए साकार बाबा, और जब 13 संदेश दादी लेके आई तो उसमें एक संदेश बहुत अच्छा बाबा का है कि जब दादी ने पूछा बाबा से कि बाबा अंतिम समय आपका क्या अनुभव था, बच्चे जानना चाहते कि आपका क्या अनुभव था, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात सुनाई कि कर्म भोग और योग बल की लड़ाई थी। कर्म भोग और योग बल की लड़ाई थी। कर्म भोग दर्द महसूस कराना चाहता था, है ना, कर्म भोग भोगना का अनुभव कराना चाहता था, दर्द का अनुभव कराना चाहता था, लेकिन कर्म योग यानी योग बल उस दर्द को जैसे काट रहा था, खत्म कर रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ तो कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए, खत्म हो गया, और कर्म योग की विजयी हो गई। तो योग बल या कर्म योग और कर्म भोग की जो लड़ाई, हर एक को ये लड़ाई से गुजरना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा से लेकर के लास्ट मनके तक हर एक को ये लड़ाई से गुजरना पड़ता है, क्योंकि शारीरिक कर्म भोग का पेपर हर एक के सामने आना ही है। और उसी समय हमारे योग बल की शक्ति का यानी कर्म योग की शक्ति का हम अनुभव करेंगे। तो वो कर्म भोग को काटने के लिए ही कर्म योग की शक्ति चाहिए। कर्म भोग दर्द का अनुभव कराएगा, भोगना का अनुभव कराने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जितना कर्म योग की शक्ति होगी, योग बल होगा, कर्म बल होगा, तो वो उस भोगना को काटेगा। वो आएगा भी अगर भोगना तो निमित्त मात्र आकर के धीरे धीरे उसके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे और हम कर्म योगी मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ते हुए जाएंगे। ये है कर्म योग, ये कर्म योग है। लेकिन उसके लिए ब्राह्मण जीवन में हमने कितना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, लंबे समय का अभ्यास चाहिए श्रेष्ठ कर्म करने का भी। अगर लंबे समय का अभ्यास नहीं होगा, इतना जमा का खाता हमारा नहीं होगा, तो वो भोगना विजयी हो जाएगी और दर्द में तड़प तड़प करके शरीर छोड़ने का एहसास होगा, लेकिन वो कर्म योग की शक्ति वाला अनुभव नहीं होगा। इसीलिए हमें अंतिम सांस तक कर्म करते ही जाना है, और जितना श्रेष्ठ कर्म करने का मौका मिले कोई मौका छोड़ना नहीं। ये नहीं कि उस समय हम पुराने संस्कार के वश हो गए, झूठ बोल दिया, गुस्सा कर लिया, चिड़चिड़ापन में आ गए, ये हो गया वो हो गया। अगर इस तरह से छोटे छोटे कर्म में भी हम पुराने स्वभाव संस्कार या कर्मेंद्रिय की अधीनता में आकर के हम कर्म करते रहेंगे तो कर्म योग का खाता जमा कब होगा और वो भोगना के ऊपर हमें विजय कैसे अनुभव कराएगा। ये भोगना हर एक के सामने, क्योंकि जीवन पर्यंत हमसे छोटी छोटी गलतियां भी हुई है, इसीलिए भोगना तो आएगी। भोगना ना आए ये हो नहीं सकता। कई जो कर्म है हमारे विकर्म बने हुए हैं और वो विकर्म चुप्तु नहीं हुए हैं। जब वो विकर्म चुप्तु नहीं हुए हैं तो वो भोगना का अनुभव तो कराएगा। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म का बल इतना चाहिए, योग की शक्ति इतनी अधिक चाहिए अंदर में, ताकि अंतिम समय इस लड़ाई में योग बल की विजयी हो और हम अंदर में एक सुकून के साथ, बाबा की याद के साथ, इस शरीर को छोड़ते हुए बाबा के पास जाए, है ना, ये हमारा लक्ष्य है। ब्राह्मण जीवन में अभी तक भी अगर वही साधारण कर्म है, छोटे छोटे कर्म में भी किसी को दुख दे दिया, किसी को तकलीफ दे दिया, किसी को कोई कष्ट हो गया हमारे कर्म से, और उसके ऊपर हमारा अटेंशन नहीं है, तो हम कर्म योगी नहीं है। कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर जो बाबा कहते, वो जब है तब हम यथार्थ रूप में कर्म योगी, यानी कर्म कर रहे हैं लेकिन योग की स्थिति में स्थित होकर के, बाबा की याद में स्थित होकर के हम कर्म में आते हैं। दादी जी ने जब ये हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल का ये निकाला, तो उसी भाव से, उसी लक्ष्य से निकाला कि भाई एक मिनट के लिए साइलेंस हो जाओ, जो कर्म करते हैं साइलेंस हो जाओ और देखो अपने आप को कि मेरी कर्म करने के समय साधारण वृत्ति है या श्रेष्ठ वृत्ति है, किस वृत्ति से हम ये कर्म में आ रहे हैं। यही भाव के साथ ये एक मिनट साइलेंस दादी ने करवाया था, इंट्रोड्यूस किया था। आज कई बार बचता है, लेकिन उस समय हम अपने आप में उस रूप में नहीं देख सकते हैं कि मेरी वृत्ति क्या है, ये कर्म करते समय बाबा की याद उसमें समाई हुई है या नहीं है। तो इसीलिए वो कर्म श्रेष्ठ नहीं होता है। जितना कर्म श्रेष्ठ, उतना अंदर में बल महसूस होता है, जो हमें योग के करने समय भी योग युक्त तो सहज बना देता है, या योग सहज लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। आज जो कई बार ब्राह्मणों की ये शिकायत होती है कि योग करने बैठते हैं लेकिन उस वक्त नींद आ जाती है, आंखें भारी हो जाती है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि भारी हो जाना या आंखें भारी हो जाना, कोई न कोई कर्म ऐसा हुआ है जो भारीपन में किया गया था तो आंखों को भी भारी करता है। ये सूक्ष्म गति बाबा ने समझाई। अमृत वेले भी अगर आंखें भारी हो जाती है, खुली नहीं रह पाती है, तो दिनचर्या के समय हमारा कर्म श्रेष्ठ इतना नहीं हुआ है जितना हमने विकर्म, यानी छोटी छोटी गलतियों के अधीन या कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के स्वार्थ भावना, पुराना स्वभाव, संस्कार या मैंपन में जो कर्म किया है वो जमा का खाता नहीं है। इसीलिए अमृत वेले अगर उठते भी है तो भारीपन, क्योंकि वो भारी कर देता है, मन हल्का नहीं है। जब हल्का नहीं है तो उड़ कैसे सकेगा, वो भारी करके हमें बोझिल करता है और बोझ में व्यक्ति सोना स्वाभाविक है। तो इसीलिए कर्म में बल चाहिए, और ब्राह्मण बन करके रोज अगर मुरली सुनने के बाद, रोज ज्ञान अमृत का पान करने के बाद भी अगर हमारे कर्म साधारण ही रहे, तो ब्राह्मण बन करके हमने किया क्या? वही पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत रहे, जो कई बार कई बाहर के लोग भी हमें कह जाते हैं कि ये रोज मुरली सुनने तो जाते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, है ना, जैसे पहले थे वैसे ही है, तो कैसे हम माने कि इसको भगवान पढ़ाता है। तो इसीलिए कर्म श्रेष्ठ होना, क्योंकि यही तो बल हमें चाहिए जो हमें हर प्रकार के बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव। बंधन भी किस लिए बना? कर्म के कारण ही तो बना, तो कर्म ही बांधने वाला है और कर्म ही हमें मुक्त करने वाला है। तो कौन सा कर्म हमें बांध रहा है, जो बंधन बन रहा है, और वो बंधन में बांधता है तो तकलीफ महसूस कराता है, तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही हल्का बनाएगा, उपराम करेगा, साक्षी दृष्टा की स्थिति में हमें लाएगा और कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाएगा। तो कर्म योग से कर्मातीत अवस्था तक जाने की यही विधि है। कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार है ना, मालिक बन करके उसका प्रयोग करना और फिर बीच बीच में योग बाबा को याद करना। बहुत सुंदर बात एक बार बाबा ने मुरली में कही थी कि कोई भी कर्म आरंभ करो तो बाबा की याद से, जैसे कोई फंक्शन होता है तो हम बाबा की याद से शुरू करते हैं ना, ऐसे जीवन में हर कर्म करने से हमें पहले भी दो मिनट या एक सेकंड के लिए भी, दो सेकंड के लिए भी बाबा का आवाहन करते हुए कर्म करें। बीच में अगर भूल भी गई फिर बाबा को याद कर ले, और अंत में जब वो कर्म पूरा होता है तो कम से कम थैंक्स बाबा इतना तो कहे। तो बाबा का आवाहन करना, बाबा की याद बीच में अगर हो, और लास्ट में जब वो कर्म करने के बाद हम बाबा को थैंक्स करते हैं इस भाव से ही याद करें, तो बाबा के साथ का जो रिश्ता है हमारा इतना अपनापन का हो जाता है कि न चाहते हुए भी हर कर्म में बाबा की याद स्वतः आएगी, है ना। ये कर्म योग है। तो जितनी याद को निरंतर बना सके कर्म में, ये प्रैक्टिस आरंभ करें हम, क्योंकि यही प्रैक्टिस हमें अंत समय काम आनी है। इसलिए बाबा ने कई बार ये कहा है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो वो हम कर्म छोड़ करके बैठ करके अभ्यास करेंगे ये नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए ये अभ्यास जितना हमारा मजबूत बनेगा, ये हमें हरेक प्रकार के समय में, जैसे वो कर्म हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि जो कर्म योगी बन करके हम कर्म करते हैं उसमें पुण्य अर्जित होता है, अनेकों की दुआएं समाई हुई होती है, क्योंकि जब सुख मिला उनको भी हमारे कर्म से, कोई दुख या कष्ट की प्राप्ति नहीं हुई तो दुआएं ही मिलेगी, तो दुआओं का बल भी जमा होगा और मेरा पुण्य का खाता भी जमा होगा। तो उसके आधार से आने वाले समय में बड़े से बड़ी विकट से विकट परिस्थिति में भी वो दुआओं का बल, श्रेष्ठ कर्म का बल हमें उससे भी ऊपर उठा देगा। वो परिस्थिति हमें तकलीफ पहुंचा नहीं सकेगी, वो घटना, वो कोई ऐसा जो घटना है वो हमें तकलीफ महसूस नहीं करा सकेगी। और तीसरा कर्म योग का मतलब है कि प्रकृति के अधीन से मुक्त होकर के कर्म करना। कौन सी प्रकृति है ना, तो तामसिक प्रकृति। आत्मा में तीन प्रकृति वाले बताए जाते हैं, एक सात्विक प्रकृति, एक राजसिक प्रकृति और एक तामसिक प्रकृति। इसलिए बाबा की साकार मुरली में कई बार आता है कि बच्चे अभी तक तो रजो प्रदान तक भी नहीं पहुंचे, माना राजसिक प्रकृति। तो तामसिक प्रकृति हमें बांधती है और सात्विक प्रकृति हमें मुक्त करती है, हर एक प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त करती है। तो इसीलिए जितनी सात्विक प्रकृति हमारी है तो प्रकृति के अधीन, यानी तामसिक प्रकृति की अधीनता से ऊपर और सात्विक प्रकृति के अंदर आकर के स्थित होकर के कर्म करना। जब तामसिक प्रकृति के अधीन होना, माना स्वभाव संस्कार, जो पुराने स्वभाव संस्कार उसके अधीन होना, और जो अधीन होकर के कर्म करते हैं वो प्रकृति जीत नहीं बन सकता है। तो प्रकृति जीत बनने के लिए सात्विक प्रकृति में स्थित होकर के हम जब कर्म करते हैं तो वही हमें प्रकृति जीत भी बनाता है और कर्मातीत स्थिति तक पहुंचाता है। तो हम ब्राह्मणों का लक्ष्य जब जीवन का यही है कि हमें जीवन के अंदर इतना श्रेष्ठ कर्म करके अपना ऐसा बल अंदर जमा करे, या खाता ऐसा हमारा जमा हो कि हर प्रकार से अंतिम समय में भी हां कर्म भोग हमें कोई प्रकार की तकलीफ का अनुभव न कराए, पुराने स्वभाव संस्कार अंतिम समय हमें तकलीफ का अनुभव कराने के लिए टेस्ट पेपर बन करके हमारे सामने न आए, लेकिन उससे परे हो करके हम कर्म करें। तो इसलिए कर्मातीत का मतलब ये नहीं कर्म से अतीत हो जाना, लेकिन उस बुरी वृत्ति से, बुरी प्रकृति से या तामसिक प्रकृति से ऊपर, और जितना हमारी सात्विक प्रकृति का अभ्यास बढ़ता जाएगा दिनचर्या में, थोड़े समय का अभ्यास करते 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 धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए, तो सात्विक प्रकृति जितनी हमारी होगी उस प्रकृति में वही हमें सतो प्रधान स्थिति का अनुभव कराएगा। कर्मयोगी यथार्थ रूप में हम बन जाएंगे और कर्मातीत स्थिति हमारी सहज हम अपनी बना सकेंगे। तो यही एक विधि है जो कर्म योग से कर्मातीत स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे यज्ञ के आदि रत्न को हमने देखा कि भाई कैसे कर्म योग से कर्मातीत बनते गए, ब्रह्मा बाबा मम्मा, माना शारीरिक बीमारी का पेपर हरेक के सामने आए भोगना तकलीफ देने का अनुभव कराने के लिए, मम्मा के सामने भी जब पुरानी दादियां मम्मा का अनुभव सुनाती है तो भी ये बात बताती है कि कैंसर जैसी बीमारी थी उस समय कोई ये नहीं था, कोई इलाज नहीं था, कोई ये नहीं था, फिर भी लास्ट दिन भी कर्म योग का आचरण। बाबा ने कहा कि बच्चे हर एक बच्चे को बाबा के बगीचे के अंगूर खिलाओ तो बाबा की याद में उस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजयी हो करके, नहीं तो आप सोचो लास्ट समय में कितनी तकलीफ हो सकती है कैंसर वाले पेशेंट्स को, लेकिन मम्मा के चेहरे पर एक रेखा तक नहीं देखी, ये था कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजयी स्थिति। तो भोगना अगर बड़ों बड़ों को आई तो क्या हम लोगों को नहीं आएंगी क्या, है ना? तो इसीलिए कर्म योग की शक्ति चाहिए जो हम उसके ऊपर संपूर्ण विजयी हो करके अंतिम समय तक अपने चेहरे के ऊपर एक रेखा तक दुख दर्द की सामने वाले को भी महसूस न कराए कि इसको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। जैसे दुनिया में किसी को तकलीफ होती है तो अंतिम समय दिखाई देता है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ में ये जैसे तड़प तड़प करके शरीर छोड़ रहा है, ऐसे हमारे लिए कोई न कहे, लेकिन शरीर छोड़ते समय भी वो योग का तेज ऐसा हो जो लोग कहे कि भाई इतनी बड़ी बीमारी थी लेकिन फिर भी चेहरा अंत तक मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ इनका रहा, ये है कर्म योग का प्रैक्टिकल स्वरूप। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
योगी जीवन। अभी लक्ष्मण भाई जी हम सबके सामने बाबा की याद का गीत रखेंगे।
तुझे देख कर जग वाले पल, तुझे देख कर जग वाले पल यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पल यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ तुलसी के गिरवा को हर बहती गंगा कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर का संगम आधार तो प्रेम कहानी मिले प्यासे मन में यूतरी जो रेत में झरना पानी का रेत में झरना पानी का अपना रूप दिखाने को अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा
शांति।